नमस्कार दोस्तों, आइए आपको रुख कराते हैं उन चर्चित खबरों की जो कि बीते हफ्ते मीडिया में छाई रही हैं। इन खबरों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी और इनकी स्थिति हमें पल पल बदलती नजर आई है। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन अल्फ्रेड की। क्वींसलैंड के निवासी चक्रवात अल्फ्रेड के लिए अपनी अंतिम तैयारियों में लगे हुए हैं, जिसके अब शनिवार यानी 8 मार्च को सुबह 2 बजे तट पार करने का पूर्वानुमान लगाया गया है। आपको बता दूं कि ये चक्रवात दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड और उत्तर पूर्वी न्यू साउथ वेल्स में 50 से भी अधिक सालों में आने वाला पहला चक्रवात होगा। जहां ये कैटेगरी 2 सिस्टम साइक्लोन धीमा होता नजर आ रहा है, मौसम विज्ञान ब्यूरो का अनुमान है कि ये नूसा और कुलंगाटा के बीच क्वींसलैंड तट पर दस्तक देगा। आपको बता दें कि इससे प्रभावित क्षेत्रों में क्वींसलैंड में डबल आइलैंड पॉइंट से लेकर न्यू साउथ वेल्स में ग्राफ्टन तक शामिल है, जिसमें कि ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, बायरन बे और बलीना जैसे क्षेत्र भी आते हैं। ऐसे में राज्य के अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के आयुक्त स्टीव स्मिथ ने निवासियों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। ये जो चक्रवात है, ये तेज और खतरनाक हवाएं ला सकता है। इससे भारी बारिश, तेज बाढ़ और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी आशंका है। आपको बता दूं कि तूफान से हुए नुकसान, बाढ़ के पानी, गिरे हुए पेड़ों या छत के नुकसान से जुड़ी मदद के लिए आप स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज यानी SES को 132500 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस चक्रवात से संबंधित बदलती स्थितियों पर SBS हिंदी आप तक अपडेट पहुंचाता रहेगा और यदि आपके कोई भी परिचित इस इलाके में रहते हों तो उन्हें इस स्थिति की जानकारी जरूर दें। जहां ऑस्ट्रेलिया में बीते हफ्ते चक्रवात अल्फ्रेड सुर्खियों में रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में 27 देशों के यूरोपीय क्लॉक के नेताओं ने ये सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की है कि यूक्रेन को उचित रूप से संरक्षित किया जाए। आपको बता दें कि ऐसा अमेरिका द्वारा यूक्रेन के साथ सैन्य सहायता निलंबित करने और खुफिया जानकारी साझा करने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद किया गया है। यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन का कहना है कि यूरोप के नेताओं के लिए तत्काल कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। इसी के जवाब में वरिष्ठ अमरीकी अधिकारी अगले हफ्ते सऊदी अरब में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ वार्ता करने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने ये पुष्टि की है कि ये बातचीत या तो रियाद में की जाएगी या फिर जेडा में। आपको बता दूं कि ये चर्चा बीते हफ्ते ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक के बाद अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंधों में आई गिरावट के बाद होगी। ऐसे में विटकॉफ ने एक बयान में कहा है कि वे इस पूरी स्थिति के बारे में अब सकारात्मक महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दे के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से संबंधित भी एक निर्णय की घोषणा की जो कि सुर्खियों में रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मेक्सिको से आने वाले अधिकांश इंपोर्ट पर 25% टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। ये घोषणा गुरुवार को उनकी मेक्सिकन समकक्ष क्लॉडिया शिनबाम के साथ हुई बातचीत के बाद की गई है। आपको बता दें कि ये जो डीले है ये 2 अप्रैल तक लागू है। इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल से पहले मेक्सिको को अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच मुफ्त व्यापार समझौते, जिसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट भी कहा जाता है, के तहत आने वाली किसी भी वस्तु पर टैरिफ का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में प्रेसिडेंट शिनबाम ने एक बयान में बताया कि उनकी इसी मुद्दे पर ट्रंप के साथ गहरी बातचीत हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में फेडरल पुलिस ने एक किशोर पर हाल ही में एक केस दर्ज किया है, जिसने कि कथित तौर पर यात्रियों द्वारा पकड़े जाने से पहले एक कमर्शियल उड़ान में जबरन घुसने की कोशिश की। ये घटना गुरुवार यानी 6 मार्च को दोपहर में विक्टोरिया में जिलोंग के पास एवलॉन हवाई अड्डे पर हुई। पुलिस वहां सूचना मिलने के बाद पहुंची, जब ऐसा रिपोर्ट किया गया कि एक बंदूकधारी व्यक्ति जेटस्टार की उड़ान में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। विक्टोरिया पुलिस अधीक्षक माइकल रीड ने संवाददाताओं को बताया है कि बैलेरेट का रहने वाला ये 17 वर्षीय किशोर अकेले ही हवाई अड्डे की सुरक्षा बाड़ में एक छेद से चढ़ गया और फिर पैदल विमान में चढ़ने की कोशिश में था। आपको बता दें कि लगभग 150 लोगों को लेकर जा रही ये उड़ान सिडनी की ओर जा रही थी। पुलिस ने इस युवक पर कई अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें कि विमान पर अवैध रूप से नियंत्रण करना, बम विस्फोट की अफवाह फैलाना और बंदूक रखना शामिल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा डेटा भी जारी हुआ है जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इनइक्वालिटी सामने आती है। आपको बता दूं कि इस डेटा से पता चलता है कि सबसे अमीर ऑस्ट्रेलियाई और भी अमीर होते जा रहे हैं, जबकि कम आय वाले लोग पहले से कहीं अधिक संघर्ष कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से चल रहे हाउसिंग इनकम और लेबर डायनेमिक सर्वे सीरीज में मेलबर्न इंस्टीट्यूट के नवीनतम सर्वेक्षण से पता चलता है कि कोविड काल के समर्थन भुगतान के कारण अस्थायी रूप से कम होने के बाद वेल्थ डिवाइड 20 से अधिक वर्षों में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020 में आयोजित सबसे हालिया सर्वेक्षण में 2001 में वार्षिक अध्ययन शुरू होने के बाद से ही उत्तरदाताओं से वित्तीय असमानता का सबसे उच्चतम स्तर दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस हफ्ते की दो बड़ी खबरें खेल जगत से भी आई हैं। दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथियों को धन्यवाद दिया जब उन्होंने वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कल यानी 6 मार्च को ये घोषणा करते हुए 35 वर्षीय स्मिथ ने बताया कि वे अब भी टेस्ट और T20 चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने 2010 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर के रूप में अपना वन डे डेब्यू किया था और इस प्रारूप में उन्होंने 170 मैचेस खेले हैं। इन 170 मैचेस में उन्होंने 12 शतकें और 5,800 रन अपने नाम किए। रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब अगली पीढ़ी के लिए जगह बनाने का सही समय है और साथ ही कहा कि ये सफर उनके लिए शानदार रहा है जहां उन्होंने हर मिनट का आनंद लिया। जहां स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टेनिस के महान खिलाड़ी फ्रेड स्टॉल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बता दें कि स्टॉल, जिन्हें फायरी के निकनेम से भी जाना जाता था, उन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम किए हैं। वे पूर्व विश्व नंबर 1 भी रह चुके हैं और उन्होंने डुअल ग्रैंड स्लैम, सिंगल चैंपियन और 3 बार डेविस कप भी अपने नाम किया है। ऐसे में टेनिस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी क्रेग टिली ने उनकी विरासत को उत्कृष्टता, समर्पण और टेनिस के प्रति गहरे प्रेम के रूप में वर्णित किया। तो दोस्तों, ये थी बीते हफ्ते की कुछ मुख्य खबरें जो कि आप तक लेकर आई भव्या पांडे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। शुक्रिया।